आर्या ने ओबेरॉय मेंशन छोड़ दिया था। उसे घर छोड़ने से किसी ने नहीं रोका था, यहां तक कि उसके दादाजी विक्रम सिंह ओबेरॉय ने भी नहीं। हालांकि वो आर्या के घर छोड़ने से बहुत दुखी थे, पर बाकी घर वालों के सामने उन्होंने कुछ रोकी नहीं किया। उनके ऐसा करने पर आर्या को काफी गुस्सा आ रहा था। आर्या अपने लगेज के साथ ऑफिस पहुंचा। सब कोई उसे सूटकेस के साथ देखकर हैरान हो रहा था, मगर किसी को भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी। आर्या सूटकेस को घसीटते हुए अपने केबिन में आया और उन्हें एक तरफ रख दिया। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बाकी लोगों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन दादू वो तो मेरे साथ आ सकते थे। ऐसे तो बड़ा कहते रहते हैं तेरे बिना मेरा खाना हजम नहीं होता, और अब पिछले दो दिनों से मुझे कॉल तक नहीं किया। अब तो हद ही हो गई। मैंने जब उन्हें मेरे साथ आने का कहा तो उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया। गुस्से में बड़बड़ाते हुए आर्या ने अपना हाथ फाइल्स पर पटका। उसे ऑफिस आए हुए आधे घंटे हो चुके थे, पर उसका काम में मन नहीं लग रहा था। वो गुस्से में बड़बड़ाए जा रहा था। केबिन के बाहर अपनी डेस्क पर काम करते हुए उसकी सेक्रेटरी जेनी की नज़रें अंदर की तरफ बनी हुई थीं। इतने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे, लेकिन सर का एटीट्यूड, इनकी शक्ल देखकर साफ पता चल रहा है कि ये गुस्से में है। इस वक्त अंदर गई तो मेरी जान ले लेंगे। अगर मैंने इन्हें टाइम से साइन नहीं करवाया तो उसका गुस्सा भी मुझे पर निकलेगा। प्लीज गॉड सेव मी, कोई तो मैजिक कर दो कि मुझे अंदर ना जाना पड़े। जेनी आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना करके जेनी ने आंखें खोली तो उसने देखा सामने से ध्वनि चलकर आ रही थी। उसे देखते ही जेनी ने राहत की सांस ली, मानो भगवान ने उसकी सुन ली हो। क्या हुआ? क्या वो आज फिर गुस्से में ऑफिस आया है, जो तुम हाथ जोड़कर भगवान जी से कुछ मांग रही हो? ध्वनि ने उसके पास आकर पूछा। जेनी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, महीने के 20 दिन सर ऐसे ही मूड में ऑफिस आते हैं। हाँ सही कहा, ध्वनि ने जवाब दिया। फिर उसने जेनी के चेहरे की घबराहट को भांपते हुए आगे कहा, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हें यहाँ काम करते हुए एक साल से भी ज्यादा हो गया है, फिर भी तुम्हें डर लगता है। अब तक तो तुम्हें इसकी आदत हो जानी चाहिए। सिर्फ आखिरी बार प्लीज इस बार मेरी हेल्प कर दीजिए, बोलते हुए जेनी ने जबरदस्ती डॉक्यूमेंट्स ध्वनि के हाथ में पकड़ा दिए। ध्वनि ने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा और फिर जेनी की तरफ घूर कर देखा। उसने कहा, जेनी अब तक ये साइन हो जाने चाहिए थे, इन्हें कोर्ट में सबमिट भी करना है। इसका गुस्सा वो मुझ पर करेगा। हद हो गई यार, मैं उसकी असिस्टेंट नहीं हूँ, मैं भी इस कंपनी में हिस्सेदार हूँ, वो भी पूरे 5% की। जवाब में जेनी ने उसके सामने अपने हाथ जोड़े और आंखों को किसी मासूम बच्चे की तरह बार बार झपकाने लगी। उसे देखकर ध्वनि को दया आ गई। ठीक है, लेकिन सिर्फ आखिरी बार, आगे से मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ध्वनि ने वो पेपर उठाए और अंदर जाने लगी। उसके डॉक्यूमेंट्स ले जाने की वजह से जेनी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने एक बार फिर हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया किया। थैंक यू सो मच गॉड, ये सच में एक एंजल है, जेनी ने बुदबुदा कर कहा और फिर वहां डेस्क पर फैली फाइल्स पर काम करने लगी। वहीं ध्वनि डॉक्यूमेंट के साथ अंदर पहुंची तो उसकी नज़र सबसे पहले वहां रखे सूटकेस पर गई। उसे देखकर उसने अजीब चेहरा बनाया और दौड़कर आर्या के पास गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, थारे बापू ने थारे को घर से निकाल दिया, ध्वनि गुजराती एक्सेंट में बोली। उसके ऐसा बोलने पर आर्या ने घूर कर उसकी तरफ देखा। गुस्से में उसकी नाक लाल थी। एक्सक्यूज मी, मुझे किसी ने घर से नहीं निकाला है, मैं खुद वो घर छोड़कर आया हूँ, आर्या ने जवाब दिया। बात तो एक ही है, अब तू उस घर में नहीं जा सकता, चाहे तूने वो घर अपनी मर्जी से छोड़ा हो या तुझे वहां से निकाला गया हो। देख, तूने अपने पापा के बिजनेस को पहले ही छोड़ दिया था और अब घर भी छोड़ दिया। लगता नहीं कि तेरे खानदान की प्रॉपर्टी में से तुझे कुछ मिलने वाला है। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मैं अपने दम पर बहुत कुछ कर सकता हूँ और रिजल्ट तुम्हारी आंखों के सामने है। इतनी बड़ी कंपनी मैंने अपने दम पर खड़ी की है, बोलते वक्त आर्या के चेहरे पर गर्व के भाव थे। ये क्या बोल रहा है तू? कंपनी तेरे अकेले की नहीं है और ना ही तुमने सिर्फ अपने दम पर खड़ी की है, 5% की हिस्सेदारी मेरी भी है। ये भी तुझे अच्छे से याद होगा कि कितनी मुश्किल से मैंने तेरे लिए पैसे का जुगाड़ किया था। बातों बातों में ध्वनि आर्या का मूड सही करने की कोशिश कर रही थी। उसकी बातें सुनकर आर्या का मूड काफी हद तक सही भी हो रहा था। उसने थोड़ा भावुक होकर कहा, हाँ एक तू ही है जिसे मैं अपने दिल की सारी बातें बता सकता हूँ। पहले तो दादू भी थे, पर अब तो उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। थैंक यू सो मच ध्वनि, बस ऐसे ही मेरे साथ रहना। हाँ जरूर, लेकिन तू भी बात बात पर अपना मूड मत चढ़ाया कर। अरे हम यहाँ के राजा हैं, हमें किसी की क्या जरूरत है? क्या हुआ जो उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया? मेरा घर है, तुम्हारे पास भी अपना अलग घर है, तुम चाहो तो एक और नया घर खरीद सकते हो। ध्वनि के मुंह से घर से निकालने की बात सुनकर आर्या को फिर से सब याद आ गया। उसने उसकी तरफ आंखें तरेर कर देखा। उसके चेहरे पर फिर से वही गहरे गुस्से के भाव थे। बाप रे, इतना गुस्सा, देख तेरी नाक लाल हो गई। अगर तू इसी तरह गुस्सा करता रहा तो आर्या ऑफिस वाले ऑफिस छोड़कर भाग जाएंगे, ध्वनि ने कहा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं उन्हें टाइम पर अच्छी सैलरी पे करता हूँ, तो कोई कहीं नहीं जाएगा। चल छोड़ इन सबको और बता, तू यहाँ क्यों आई थी? आर्या के बात बदलते ही ध्वनि ने अपने साथ लाए डॉक्यूमेंट उसके सामने रखे और कहा, इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने के लिए लाई थी। तेरा गुस्सा देखकर तेरी वो जैनी पैनी तो अंदर तक आने के लिए तैयार नहीं थी। आर्या ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने वो डॉक्यूमेंट्स गौर से पढ़े और फिर उन पर साइन कर दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, आज वो नई लड़की भी आने वाली थी ना जिसे प्लेसमेंट मिली थी, तुमने लीगल काम करवाया या नहीं? आर्या ने पूछा। हाँ, करवा दिया, बस तभी ऑफिस आने में देर हो गई थी। बोलते हुए ध्वनि ने अपने साथ लाए पेपर्स को भी आर्या के सामने रख दिया। कल तेरे जाते ही मैं लॉयर के पास चली गई थी, उसने सुबह कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में सबमिट करवा दिया था, उसी की कॉपी लेकर आई थी। चलो अच्छा है, सब कुछ आसानी से और जल्दी जल्दी हो गया, आर्या ने जवाब दिया। कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर शिवी का नाम पढ़ने के बाद आर्या को कल डिग्री सेरेमनी की याद आ गई, जहां शिवी ने अपना चेहरा कवर कर रखा था। उसने उसे प्लेसमेंट मिलने की बधाई भी दी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया था। वो लड़की भी कुछ कम अजीब नहीं है, आर्या ने खोए हुए अंदाज में कहा। आने दो इसे ऑफिस, इससे भी कुछ हिसाब चुकाना है। आर्या की बात सुनकर ध्वनि जल्दी से बोली, बिल्कुल भी नहीं, तू आज उससे बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तेरा मूड पहले से खराब है, ऊपर से उस लड़की का आज पहला दिन होने वाला है, तो क्या चाहता है वो पहले दिन ही यहाँ से भाग जाए? हाँ तो भाग जाए, क्या फर्क पड़ता है, उससे उसी को नुकसान होने वाला है। नंबर वन, वो यहाँ पर जॉब करने का मौका खो देगी, और नंबर टू, उसे हमें कॉम्पेंसेशन कर देना होगा। आर्या के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। तुझे उससे जो बदले लेने हैं ले लेना, लेकिन आज नहीं, उसे मैं खुद देख लूंगी, ध्वनि ने कहा और वहां से जाने लगी। आर्या ने उसके पीछे से तेज आवाज में कहा, तुम कब तक उससे मुझसे बचा कर रखोगी? आज नहीं तो कल यहाँ काम करते हुए उसे मेरे सामने आना ही होगा। ध्वनि ने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया और अपने केबिन में आ गई। उसने जेनी से शिवी को अपने केबिन में भेजने की बात भी कह दी थी। वहीं दूसरी तरफ शिवी का आज डिजायर्स में पहला दिन था। वो वहाँ जाने से पहले तैयार होकर बाहर आई।
उसने काफी कैजुअल लुक ले रखा था, उसे वो जॉब नहीं करनी थी, इसलिए उसने सिंपली व्हाइट पैंट पर अपना वही पिंक स्वेटर डाल रखा था। उसके गले में व्हाइट स्कार्फ था। उसे इस तरह तैयार हुआ देखकर जिया ने मुंह बनाया और कहा, तेरी उसके सामने इमेज ऐसी ही कुछ खास अच्छी नहीं है, ऊपर से तू ऐसा तैयार होकर जाएगी तो तुझे वहां का सिक्योरिटी गार्ड भी अंदर नहीं जाने देगा। हाँ तो मैं कौन सा उसे इम्प्रेस करने जा रही हूँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वो मुझे अंदर ना आने दे, वो मुझसे डिप्रेस हो जाए और धक्के मारकर काम से निकाल दे, शिवी ने बेपरवाही से जवाब दिया। कमॉन यार, अपना नहीं तो मेरी इमेज का उच्च तो ख्याल कर, चल मैं तुझे तैयार करती हूँ, जिया जबरदस्ती शिवी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। उसने शिवी की कपड़ों की अलमारी खोली और कपड़े देखने लगी। उसे देखने के बाद उसने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारी तरह तुम्हारा वार्डरोब भी बहुत बोरिंग है मैं सैयर। मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तो मुझे और देर मत करा और जाने दे, शिवी उसकी बात को टालकर बाहर निकल रही थी, लेकिन जिया उसके पीछे दौड़कर आई और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे अंदर घसीट लिया। उसने शिवी की अलमारी से ब्लू जीन्स और व्हाइट विंटर टी शर्ट निकाला। ऊपर पहनने के लिए उसने उसके लिए ब्राउन ओवरकोट निकाला था। ठंड काफी ज्यादा होने की वजह से साथ में मैच करने के लिए उसने रेड स्कार्फ निकाला। उसे देखने के बाद शिवी ने मुंह बनाकर कहा, एक्सक्यूज मी मैडम, मैं ऑफिस जा रही हूँ ना कि डेट पर। लाइक सीरियसली, तू क्या डेट पर ऐसे कपड़े पहनकर जाएगी? तुझे क्या लगता है तू जब डेट पर जाएगी तब मैं तुझे ऐसे कपड़ों में जाने दूंगी? जिया ने जवाब दिया। लेकिन मुझे देर, शिवी उसे टालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिया ने उसकी एक नहीं मानी। उसने जबरदस्ती शिवी के हाथ में वो कपड़े थमा दिए और उसे बाथरूम में धकेल कर बोली, अगर तू नहीं चाहती कि तुझे और ज्यादा देर हो तो जल्दी से तैयार होकर बाहर आ। मजबूरन शिवी को जिया की बात माननी ही पड़ी। 10 मिनट बाद वो कपड़े पहनकर बाहर निकली। अपने पसंद के कपड़ों में शिवी को देखने के बाद जिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। जल्दी उसकी मुस्कुराहट छोटी पड़ गई और उसने मुंह बनाकर कहा, कपड़े तो ठीक है लेकिन मेकअप और बालों का भी कुछ करना होगा। जिया ने शिवी को ड्रेसिंग के आगे जबरदस्ती बिठा दिया। उसने उसके चेहरे पर हल्का मेकअप किया और बालों को स्ट्रेट कर दिया। उसने उसके आगे के कुछ बालों को निकालकर पीछे से आरे बालों को लेकर हाई बन बना दिया। शिवी का ये लुक काफी कूल लग रहा था। हाँ, अब कह सकते हैं कि एक कॉलेज पास आउट प्लेसमेंट के लिए आई है। पहले को ऐसे लग रहा था जैसे किसी राह चलती बेचारी लड़की को दया खाकर किसी ने जॉब दे दी हो। उसे तैयार हुआ देखकर जिया काफी खुश हुई। शिवी ने उसे थैंक कहा और जल्दी से बैग लेकर डिजायर के लिए निकल पड़ी। लगभग एक घंटे बाद वो रिचार्ज के ऑफिस पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट को अपनी आईडी दिखाने के बाद उसने आर्या के ऑफिस का फ्लोर पूछा और जल्दी जल्दी वहां जाने लगी। ओ गॉड, पहले दिन ही लेट हो गई, इस बात को लेकर वो मुझे पक्का सुनाएगा, उस दिन वाली बात को भी वो भूला नहीं होगा। वैसे देखा जाए तो ये बात भी मेरे फेवर में जाएगी, वो मुझसे गुस्सा होगा और मुझे निकाल देगा। लिफ्ट रुकते ही शिवी बाहर निकली। वो तेज कदमों से चलते हुए आर्य के केबिन के पास पहुंची।